ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. ഭഗവാൻ നാരായണക്കോ നരശ്രേഷ്ഠനർക്കോ ദേവി സരസ്വതിക്കോ വ്യാസജിക്കോ മഹാഭാരതക്കോ പ്രണാം കർക്കേ അബ് ആഗേ കി കഥ കേത്തെ ഹേ. ജന്മേജയനെ പൂച്ഛാ, ഹേ ബ്രഹ്മൻ, മേരെ പ്രപിതാമഹോ നെ അർത്ഥാത് പടദാദാവോ നെ ദുര്യോധന കെ ഭയ സെ കഷ്ട ഉഠാതെ ഹുവെ വിരാട് നഗർ മേ അപ്നെ അജ്ഞാതവാസ കാ സമയ കിസ് പ്രകാർ പൂരാ കിയാ തഥാ വഹാ പർ ദുഃഖ ഉഠാനെ വാലി പതിവ്രതാ ദ്രൗപദി ഭീ കിസ് പ്രകാർ ഛിപ്കർ രഹ സകി ക്യോകി ഉൻകാ തോ കിസി പ്രകാർ ഛിപ്കർ രഹന സംഭവ ഹി നഹീ ഥാ. ഏക ധർമ്മ മേ ശ്രേഷ്ഠ ഹൈ, ഏക ബല മേ ശ്രേഷ്ഠ ഹൈ, ഏക ധനുർബാണ മേ ശ്രേഷ്ഠ, യഹി കഭി ഛിപ്നെ വാലേ ഹൈ. ജിസ് പ്രകാർ കിത്നാ ഹി ബദൽ പാനി ബർസായേ സൂര്യ കി കിരണേ ഉൻമേ സേ ഭീ പ്രകട ഹോ ജാതീ ഹൈ, ഇസി പ്രകാർ പാണ്ഡവ കിത്നേ ഭീ ഗുപ്ത രഹേ ഹോ പ്രകട ഹുവേ ബിനാ രഹ ഹി നഹീ സക്തേ ഥേ, ഫിർ വേ കിസ് പ്രകാർ ഛിപ് കർകേ രഹേ. വൈശംപായന ജി കഹതെ ഹൈ കി തുമ്ഹാരേ പർദാദാവോ കി ബാത് മേ തുമ്ഹേ സുനാതാ ഹൂം. यक्ष से वरदान पाने के अनंतर एक दिन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को बुलाकर कहा, राज्य से बाहर होकर वन में रहते हुए हम लोगों को 12 वर्ष बीत गए, अब 13वां वर्ष लग रहा है, इसमें बड़े कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए गुप्त रूप से रहना होगा। अर्जुन, तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई अच्छा सा निवास स्थान बताओ जहां हम सब लोग चलकर 1 वर्ष रहें और शत्रुओं को इसकी कान कान तक खबर न हो। अर्जुन बोले, महाराज, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि धर्मराज के दिए हुए वर के प्रभाव से हमें कोई भी मनुष्य पहचान लेगा नहीं पहचान सकता, अतः हम लोग स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरण करेंगे तो भी मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय और गुप्त राष्ट्रों का नाम बताता हूं। कुरु देश के पास बहुत ही सुरम्य देश है जहां बहुत अन्न होता है, उनके नाम ये हैं पांचाल, चेदी, मत्स्य, सूरसेन, पटच्चर, दशार्ण, नवराष्ट्र, मल्ल, शाल्व, युगंधर, कुंतिराष्ट्र, सुराष्ट्र और अवंती। इनमें से किसी भी देश को आप निवास के लिए पसंद कर लें, उसी में हम सब लोग 1 वर्ष रह जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हारी बात बहुत ठीक है, तुम्हारे बताए हुए देशों में से मत्स्य देश का राजा विराट बहुत बलवान है और पांडु वंश पर प्रेम भी करता है, साथ ही वह उदार है, धर्मात्मा है, वृद्ध भी है, इसलिए विराट नगर हमको अच्छा लगता है। हम 1 वर्ष तक निवास करें और राजा का कुछ काम करते रहें, किंतु अब तुम लोग बताओ कि मत्स्य देश में विराट नगर में हम लोग रहें और राजा विराट के पास कौन कौन आदमी क्या क्या काम करेंगे, जरा हमको ये बताओ। अर्जुन ने कहा, नरदेव, आप उनके राष्ट्र में कैसे रह सकोगे अथवा कौन सा काम करने से विराट नगर में आपका मन लगेगा? युधिष्ठिर बोले, देखो भाई, मुझे पासा खेलने की विद्या खूब अच्छे ढंग से आती है और वो खेल मुझे पसंद भी है। इसको जुए का रूप नहीं बनाएंगे, केवल पासा खेलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कंक नाम का ब्राह्मण बनकर राजा के पास जाऊं और उनकी राजसभा का एक सभासद बना रहूं। मेरा काम होगा राजा, मंत्री तथा राजा के संबंधियों को पासे खिलाता रहूं और पासे खिला खिलाकर उनको राजी करता रहूं। अरे भीमसेन तुम तो बताओ तुमको कौन सा काम अच्छा लगता है। भीमसेन ने कहा मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं रसोई बनाने में बड़ा चतुर हूं, अतः मैं बल्लव नाम का रसोईया बनकर राजा के दरबार में उपस्थित रहूंगा और भोजन बनेगा। भोजन बनाने वाला तो अपने नाक से यूं ही खूब सा भोजन कर लेता है। युधिष्ठिर जी बड़े खुश हुए। अच्छा अर्जुन तुम क्या काम करोगे भाई? अर्जुन ने कहा मैं हाथों में शंख तथा हाथी दांत की चूड़ियां पहनकर सिर पर चोटी गूंथ लूंगा और अपने को नपुंसक घोषित करता हुआ वृहन्नला बताऊंगा। मेरा काम होगा राजा विराट के अंतपुर की स्त्रियों को संगीत और नृत्य कला की शिक्षा देना, साथ ही उन्हें कई प्रकार के बाजे बजाना भी सिखाऊंगा। इस तरह नर्तकी के रूप में अपने आप को छिपाए रखूंगा। युधिष्ठिर ने कहा भैया नकुल अब तुम भी अपनी बात बतला दो, विराट नगर गया कौन सा काम करोगे? नकुल ने कहा मुझे अश्व विद्या की विशेष जानकारी है, घोड़ों को चाल सिखलाना, उनकी रक्षा और पालन करना, घोड़ों में कोई बीमारी लग जाए तो उसकी चिकित्सा करना, इन सब कार्यों में विशेष कुशल हूं। अतः राजा के यहां जाकर मैं अपना नाम ग्रंथिक बताऊंगा और उनका अश्वपाल बनकर रहूंगा। अब अपने सबसे छोटे भाई सहदेव से युधिष्ठिर ने पूछा सहदेव तुम अपना परिचय राजा को जाकर क्या दोगे और कौन सा काम करके अपने आप को गुप्त रखोगे? सहदेव ने कहा मैं राजा की गऊ की संभाल करूंगा, कितनी ही सींग मारने वाली और पैर पटकने वाली उद्दंड गऊ क्यों न हो मैं उसे काबू में कर लेता हूं। पुचकार करके, हाथ फेर करके, सहला करके, उसकी आंखों की तरफ देखकर उसके इशारे से समझ जाता हूं ये गौ क्या चाहती है। गाय को दूहने और परीक्षा करने में बड़ा कुशल हूं। गौओं के जो लक्षण या चरित्र मंगलमय होते हैं उनका मुझे अच्छा ज्ञान है। शुभ लक्षण वाले बैल कैसे होते मैं जानता हूं। जिनके गोमूत्र को सूंघ लेने मात्र से बांझ स्त्री भी गर्भ धारण कर सकती है ऐसे बैल की मुझे पहचान है, इसलिए मैं गौओं की सेवा करूंगा, गोमूत्र को पीने से गर्भ धारण करते बैल ने गोमूत्र। मेरा नाम होगा तंतिपाल, मुझे कोई नहीं पहचान सकता, मैं अपने कार्य से प्रसन्न करूंगा। अब युधिष्ठिर ने सबके अंत में द्रौपदी से पूछा यह द्रुपद कुमारी तो हम लोगों को प्राणों से भी अधिक प्यारी है, भला यह वहां जाकर कौन सा कार्य करेगी? द्रौपदी बोली महाराज आपका सानिध्य मिलता रहे फिर क्या चिंता है, जो स्त्रियां दूसरों के घर सेवा का कार्य करती हैं उन्हें शैलेंद्री कहते हैं, अतः मैं शैलेंद्री कहकर अपना परिचय दूंगी, केशों के श्रृंगार का कार्य बहुत अच्छी तरह जानती हूं। कोई मुझे कहेगा कि तुमने किसके केस का श्रृंगार किया है तो मैं पूछने पर उत्तर दूंगी कि मैं द्रौपदी की दासी थी, द्रौपदी के केस मैंने ही संवारे थे, मैं स्वतः अपने को छिपा कर रखूंगी। इसके अलावा विराट की रानी सुदेशना भी मेरी रक्षा करेंगी, अतः आप मेरी ओर से सर्वथा निश्चिंत रहे। वैशंपायन जी कहते हैं द्रौपदी सहित सब भाइयों की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा विधाता के निश्चय के अनुसार जो जो कार्य तुम लोग करने वाले हो सब तुमने सुना दिए, मुझे भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो कि उचित जान पड़ा वो कर्तव्य बता दिया। अब पुरोहित धौम्य मुनि सेवकों और रसोइयों के साथ राजा द्रुपद के घर पर जाकर रहें और अग्निहोत्र की रक्षा करें। इंद्रसेन आदि सारथी और सेवकगण खाली रथ लेकर द्वारिका चले जाए तथा ये सब स्त्रियां और द्रौपदी की दासियां रसोइयों और नौकरों सहित पंचाल को लौट जाए। किसी के पूछने पर सबको यही बताना चाहिए कि हमें पांडवों का कुछ पता नहीं है, वे हमको द्वैत वन में ही छोड़कर न जाने कहां चले गए। इस प्रकार परस्पर निश्चय करके पांडवों ने धौम्य मुनि से सलाह ली। धौम्य ने उनके समक्ष अपना प्रस्ताव रखा, पांडवों तुमने ब्राह्मण सुरित सेवक वाहन अस्त्र शास्त्र और अग्नि आदि के संबंध में जैसी व्यवस्था की है बिल्कुल ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूं कि राजा के घर में रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिए। राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से मिलकर उनकी आज्ञा मांग लेनी चाहिए। राजाओं पर पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अपने लिए वही आसन पसंद करें जिस पर कोई दूसरे बैठने वाला न हो। समझदार पुरुष को कभी राजा की रानियों से मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार जो अंतपुर में आने जाने वाले हैं उन लोगों से तथा राजा जिनसे द्वेष रखते हों या जो लोग राजा से शत्रुता करते हों उनसे भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। छोटे से छोटा कार्य भी राजा को जताकर ही करना चाहिए, ऐसा करने से कभी हानि नहीं होती है। अग्नि और देवता के समान मानकर प्रतिदिन राजा की प्रयत्न पूर्वक परिचर्या करनी चाहिए। जो उनके साथ कपटपूर्ण बर्ताव करता है वो मारा जाता है। राजा जिस जिस कार्य के लिए आज्ञा दे उसी उसका ही पालन करे। लापरवाही घमंड और क्रोध को सर्वथा त्याग दे। प्रिय और हितकारी बात कहे। प्रिय से भी हितकारी वचन का विशेष महत्व है। सभी मनुष्य सभी विषयों और सब बातों में राजा के अनुकूल रहे। जो चीज राजा को पसंद हो पसंद न हो उसका कभी सेवन न करे। उसके शत्रुओं से बात करना छोड़ दे और कभी भी अपने स्थान से विचलित न हो। ऐसा बर्ताव करने वाला मनुष्य राजा के पास रह सकता है। विद्वान पुरुष राजा के दाहिने या बाएं भाग में बैठे। जो शस्त्र लेकर पहरा चलने वाले हों उन्हें राजा के पिछले भाग में रहना चाहिए। यदि राजा कोई अप्रिय बात कह दे तो उसे दूसरों के सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए। मैं सूरवीर हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, ऐसा घमंड मत दिखाइए। सदा राजा का प्रिय कार्य करने में लगे रहना चाहिए। अपने दोनों हाथ ओठ और घुटनों को व्यर्थ नहीं हिलाना चाहिए। बहुत बातें नहीं बनानी चाहिए। किसी की हंसी हो रही हो तो बहुत हर्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। पागलों की तरह ठहाका मार करके भी नहीं हंसना चाहिए। जो किसी वस्तु के मिलने पर खुशी के मारे फूला नहीं माता, अपमान हो जाने पर वह बहुत जो किसी वस्तु के मिलने पर खुशी के मारे फूल नहीं जाता वह अपमान के होने पर दुखी भी नहीं होता और अपने काम में सदा सावधान रहता है, वही आदमी राजा के सामने टिक सकता है। यदि कोई मंत्री पहले राजा का कृपा पात्र रहा हो और पीछे अकारण उसे दंड भोगना पड़े तो भी यदि वह उसकी निंदा नहीं करता है तो फिर उसे संपत्ति प्राप्त हो जाती है। सदा अपना ही लाभ सोचकर राजा की दूसरों के साथ अधिक बातचीत नहीं करनी चाहिए। युद्ध आदि योग्य अवसरों पर राजा को सब प्रकार की राजोचित शक्तियों से विशिष्ट बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो सदा उत्साह दिखाने वाला बुद्धिबल से युक्त शूरवीर सत्यवादी दयालु जितेंद्री और छाया के भांति राजा के पीछे चलने वाला हो वही राजा के घर में गुजारा कर सकता है। जब दूसरे को किसी काम के लिए भेजा जा रहा हो उस समय जो स्वयं उठकर आगे आ जाए और पूछे मेरे लिए क्या आज्ञा है, यही राजभवन में टिक सकता है। राजा के समान अपनी वेशभूषा न बनाओ, उनके अत्यंत निकट न रहो तथा अनेकों प्रकार की विरुद्ध सलाह न दिया करो। ऐसा करने से मनुष्य राजा का प्रिय हो जाएगा। यदि राजा ने किसी काम पर नियुक्त कर दिया हो तो उसमें दूसरों से घूस के रूप में थोड़ा भी धन न लेवे, क्योंकि जो चोरी का धन लेता है वह किसी न किसी दिन बंधन अथवा वध का दंड भोगना ही पड़ता है। पांडवों, इस प्रकार प्रयत्न करो, अपने मन को वश में रखकर अच्छा बर्ताव करते हुए 13वां वर्ष पूरा करो, उसके बाद अपने देश में आकर स्वच्छंद विचरण करना। युधिष्ठिर बोले, मर्मन, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। हमारी माता कुंती और बुद्धिमान विदुर जी को छोड़कर कौन दूसरा है जो आप जैसी शिक्षा दे सकता है। अब हमें इस दुख से छुटकारा दिलाने, यहां से प्रस्थान करने और विजयी होने के जो कर्तव्य आवश्यक हो उसे आप पूरा करें, आशीर्वाद दें। वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धौम्य जी ने यात्रा के समय जो कुछ भी शास्त्र विहित कर्तव्य है उसका विधिवत संपादन किया। पांडवों की अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को प्रज्वलित कर उन्हें उनकी समाधि और विजय समृद्धि और विजय के लिए वेद मंत्र पढ़कर हवन किया। उसके बाद पांडवों ने अग्नि ब्राह्मण और तपस्वियों की प्रदक्षिणा की और द्रौपदी को आगे करके अज्ञातवास के लिए चल दिए। उनके चले जाने पर धौम्य जी उस आह्वनी अग्नि को लेकर पंचाल देश को चले गए तथा इंद्र सेनादि सेवक द्वारिका जाकर रथ और घोड़ों की रक्षा करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। ये धौम्य ऋषि शुरू से साथ में थे, अब यहां से अलग हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर महापराक्रमी पांडव यमुना के निकट पहुंचकर उसके दक्षिण किनारे से चलने लगे। उनकी यात्रा पैदल हो रही थी। वे कभी पर्वतों की गुफाओं में, कभी जंगलों में ठहरते। आगे जाकर वे दशार्ण से उत्तर और पंचाल से दक्षिण, यक्रिलोम और सूरसेन देशों के बीच में से होकर यात्रा करने लगे। उनके हाथ में धनुष और कमर में तलवार, शरीर का रंग फीका हो गया, दाढ़ी मूछें बढ़ गई। धीरे धीरे वन का मार्ग तय करके लुकते छिपते किसी प्रकार किसी की आंखों को में न आए वे मत्स्य देश के लिए जा पहुंचे और आगे बढ़ते हुए विराट की राजधानी के निकट पहुंच गए। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया, अब नगर में प्रवेश करने से पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हम लोग अपने शस्त्र शस्त्र कहां रखें। तुम्हारा एक गांडीव धनुष बहुत बड़ा है, संसार में सब लोगों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। अतः हम लोग यदि अस्त्रों को साथ में लेकर नगर में प्रवेश करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सब लोग हमें पहचान लेंगे। भीमसेन, तुम्हारी चाल, तुम्हारी गदा, ये भी बड़ी श्रेष्ठ है, पहचानने में न आए इसका क्या उपाय करें। ऐसी दिशा में हमें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कहीं फिर 12 वर्ष के लिए वनवास न जाना पड़े। खूब सोच विचार के बताओ क्या करें। अर्जुन ने कहा, महाराज, अभी मैं कुछ देख रहा हूं। ये श्मशान भूमि के निकट एक टीले पर शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष है, खेजड़ी। इसकी शाखाएं बड़ी भयानक हैं। इसके ऊपर हर किसी का चढ़ना बड़ा मुश्किल है। इसके सिवा इस समय यहां कोई मनुष्य भी नहीं है, तो हम लोगों को इस पर शस्त्र रखते देख कोई सकेगा? कोई नहीं देख सकेगा। यह ऐसा वीरान देश है, यहां कोई नहीं आता है। स्मशान भूमि होने पर कोई मरता है, मुर्दा लेकर आते हैं तभी कोई आता है। इस डरावनी भूमि में कोई नहीं आता। यह वृक्ष रास्ते में बहुत दूर जंगल में है। इसके पास पास हिंसक जीव और सर्प आदि भी बहुत है, इसलिए इसी वृक्ष पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में प्रवेश करें। ओहो, कैसा सुयोग है, ऐसा वृक्ष मिल गया, इसकी कोटरों में शस्त्र छिपा सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, धर्मराज से यूं कहकर अर्जुन अस्त्र शस्त्रों को वहां रखने का उद्योग करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपने धनुष की डोरी को धीरे 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 उतारी ताकि कोई आवाज न हो जाए। फिर अपनी चमकती हुई तलवारों, तरकसों और छुर्रे के समान तीखे धार वाले बाणों को धनुष के साथ बांध दिया। तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, वीर तुम समीप वृक्ष पर चढ़कर ये धनुष रख दो। आज्ञा पाते ही नकुल उस वृक्ष पर चढ़ गए और उसके खोडरे में जहां वर्षा का पानी पड़ने की भी संभावना नहीं है, सबके धनुष रखकर उन्होंने एक मजबूत रस्सी से शाखा के साथ बांध दिया। उसके बाद पांडवों ने एक मुर्दे की लाश को लाकर उस वृक्ष पर लटका दिया कि जिससे उस मुर्दे की दुर्गंध के कारण कोई मनुष्य वृक्ष के निकट जा ही न सके। ये सब प्रबंध करके युधिष्ठिर ने पांचों भाइयों का एक गुप्त नाम रखा जो इस प्रकार का है, जय जयंत, विजय जयतसेन और जयतबल। फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास करने के लिए उन्होंने विराट के बहुत बड़े नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ मिलकर त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा का स्तवन किया। दुर्गा माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने प्रकट होकर विजय तथा राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और ये भी कहा, पांडव विराट नगर में तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा। तदनंतर भी धीरे धीरे विराट की सभा की ओर गए, सभा में पहुंच गए। राजा विराट राजसभा में बैठे थे। सबसे पहले युधिष्ठिर उनके दरबार में पहुंचे। वे एक वस्त्र में पासे बांधकर लेते गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से निवेदन किया, सम्राट मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरा सर्वस्व लुट गया है, इसलिए मैं आपके यहां जीविका के लिए आया हूं। आपकी इच्छा के अनुसार सब कार्य करते हुए आप ही के निकट रहने की मैं इच्छा भी रखता हूं। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर प्रेम पूर्वक पूछा, ब्राह्मण देवता मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने किस राजा के राज्य में यहां पधारने का कष्ट किया, तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है, तुम कौन सी कला जानते हो। युधिष्ठिर बोले, महाराज मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं, मेरा नाम कंक है, पहले मैं राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था, जुआ खेलने में पासा फेंकने की कला का मुझे बहुत विशेष ज्ञान है। विराट ने कहा, कंक युधिष्ठिर के पास रहे, मैंने तुम्हें अपना मित्र बना लिया, मैं जैसी सवारी में भी चलता हूं वैसी तुम्हें भी मिलेगी, मैं जैसे वस्त्र पहनता हूं तुमको भी मिल जाएंगे, भोजन पान आदि का पूरा प्रबंध मिल जाएगा, बाहर के राज्य कोष और सेना आदि तथा भीतर के धन दारा आदि की देखभाल तुम्हारे पर छोड़ता हूं, तुम्हारे लिए राजमहल का फाटक सदा खुला रहेगा, तुमसे कोई पर्दा नहीं रहेगा, तुम हमारे महल में सब जगह जा सकोगे। जो लोग जीविका के बिना कष्ट पाते हो और तुम्हारे पास आकर कोई याचना करें, उनकी प्रार्थना तुम हर समय मुझको सुना सकते हो, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन याचकों की सभी कामनाएं पूर्ण करूंगा। तुम मुझसे कुछ भी कहते समय भय और संकोच मत करना। राजा से इस प्रकार बात करके युधिष्ठिर बड़े सम्मान के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उनके गुप्त रहस्य का किसी को भी कुछ मालूम नहीं चला। तदनंतर सिंह के समान मस्त चाल से चलते हुए भीमसेन राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ में चमचा, करछी और साग काटने के लिए एक लोहे का काड़ा छुर्रा था, वेश रसोइयों का सा, पर उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने आते ही कहा, महाराज की जय हो।
कौन हो?
महाराज, मेरा नाम बल्लभ है, मैं रसोई का काम जानता हूं, मैं बहुत अच्छा भोजन बनाना जानता हूं, यदि आप मुझे अपने यहां सेवा का मौका दें तो मेरा भी कुछ आजीविका का प्रबंध हो जाए। विराट ने कहा, बल्लभ मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम रसोइये हो, तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी दिखाई देते हो। तुम्हारे आने से हमारे सभा में एक और ही तेज बढ़ गया। भीमसेन बोले, महाराज विश्वास कीजिए, मैं रसोइया हूं, आपकी उदारता का नाम सुनकर आया हूं, आपके यहां कई सेवक पल जाते हैं, मेरे भोजन से मैंने युधिष्ठिर को भी स्वादपूर्वक प्रसन्न किया है। इसके सिवा जैसा कि आपने कहा, अब मैं पराक्रमी हूं, मैं भोजन बनाता हूं तो खूब खाता भी हूं, उस खाने से मेरा शरीर भी ऐसा हो गया, अब उसका तो मैं क्या करूं। पहलवानी भी मेरे समान कोई नहीं जानता, मैं सिंहों और हाथियों से भी युद्ध करता हूं और कभी आपके यहां भी पहलवानी करके आपको प्रसन्न कर दूंगा। अच्छा भैया, तुम अपने भोजन से हम सबको प्रसन्न करो, यद्यपि ये काम तुम्हारे योग्य में समझ तो नहीं रहा हूं कि तुम केवल भोजन ही बना सकते हो, पर तुम कह रहे हो तो मैं विश्वास करता हूं। तुम्हारी इच्छा देखकर तुमको मैं रसोई में नियुक्त करता हूं, तुम मेरी पाकशाला के प्रधान अधिकारी रहो, जो लोग पहले से उसमें काम कर रहे हैं तुम सबके स्वामी बनकर उनके काम को देखते रहना। इस प्रकार भीमसेन अपने कंधे पर एक कपड़ा डालकर और दूसरे कंधे पर वही कुर्सियों का सामान लेकर रसोई में चला गया। उन्हें कोई पहचान नहीं सका, वे राजा के बड़े प्रिय हो गए। अब उसके बाद द्रौपदी शैलेंद्री का वेश बनाकर एक दुखिया की तरह नगर में भटकने लगी। उस समय राजा विराट की रानी सुदेशना अपने महल में नगर की शोभा देख रही थी, उसकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। वह एक वस्त्र धारण किए अनाथा सी जान पड़ती थी, रूप तो उसका अद्भुत था। रानी ने उसे अपने पास बुलाया, सेवकों को भेजकर बुलाया, पूछा, कल्याणी तुम कौन हो, क्या करना चाहती हो? द्रौपदी ने बड़े विनीत शब्दों में दुख भरी आवाज में कहा, महारानी जी मैं शैलेंद्री हूं, अपने योग्य कोई काम नहीं मिला, मैं दुखी होकर फिर रही हूं, मैं सोचती हूं कोई मुझे नियुक्त करेगा, किसी की सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं उसका काम कर दूंगी। सुदेशना बोली, भामिनी तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्रियां शैलेंद्री नहीं हुआ करती हैं, तुम तो तेजस्विनी रानी के समान दिखाई देते हो, तुम तो बड़ी बड़ी दास दासियों की स्वामिनी जान पड़ती हो, देखो मोटी मोटी आंखें, लाल लाल होठ, शंख के समान गला, नस और नाड़ियां मांस से ढकी हुई, पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुखमंडल वाली हो तुम, ये तुम्हारा सुंदर रूप साक्षात लक्ष्मी जैसा जान पड़ता है, तुम सच सच बताओ कौन हो, यक्ष हो या देवता हो? अथवा कोई अप्सरा हो या देवकन्या हो, न्याकन्या हो या चंद्रपत्नी हो, रोहिणी हो या इंद्राणी हो, अथवा ब्रह्मा या प्रजापति की देवियों में से कौन हो तुम? द्रौपदी बोली, रानी मैं सच कहती हूँ, न मैं देवता हूँ न मैं गंधर्वी हूँ, सेवा का काम करने वाली एकमात्र शैलेंद्री हूँ। बालों को बड़ा सुंदर बनाना जानती हूँ, गूंथना जानती हूँ, उनमें चंदन और अंगराग भी खूब अच्छे ढंग से लगाना जानती हूँ। मल्लिका, उत्पल, कमल और चंपा आदि फूलों के बहुत सुंदर सुंदर विचित्र विचित्र हार मैं चोटियों में गूंथना जानती हूँ। एक बार किसी फूल को गूंथ दूंगी, उस फूल का झड़ना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा सुंदर मैं उसको गूंथ के लगाती हूँ। आज से पहले मैं महारानी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी हूँ, जहाँ तहाँ घूम फिर कर सेवा करती रहती हूँ, और भोजन और वस्त्र के सिवा मुझे कुछ नहीं लेना देना, वह भी जितना मिल जाए उतने में संतोष कर लूंगी। सुदेशना ने कहा, शैलेंद्री मैं तुझे अपने पास रखने के लिए तरस तो रही हूं, लेकिन मुझे एक ही बात का डर है, तुम्हारी सुंदरता पर कहीं राजा मोहित न हो जाए, किंतु मुझे संदेह है राजा तुम्हें देखते ही संपूर्ण चित्त से तुम्हें ही चाहने लगेंगे और इस अंतःपुर की सारी शांति प्रसन्नता चिंताओं में हो जाएगी। मैं तुम्हें बेहद चाहती हूं, तुम मेरे पास रहो, मुझे इस बात का बड़ा भय है। द्रौपदी बोली, हे महारानी जी, राजा विराट अथवा कोई भी पर पुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, मेरे 5 तरुण गंधर्व पति हैं जो सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं, जो मुझे अपनी झूठन नहीं देता, मुझसे पैर नहीं धुलवाता, उसके ऊपर मेरे पति गंधर्व लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं, परंतु जो मुझे अन्य साधारण स्त्रियों के समान समझकर बलपूर्वक मुझे प्राप्त करना चाहे, उसको उसी रात शरीर त्याग करना पड़ता है, मेरे पति उसे एक क्षण भी जीवित नहीं रहने देते, वो उसी दिन उसको मार देते हैं। अतः आप इस बात की चिंता न करें, कोई भी पुरुष मुझे सदाचार से विचलित नहीं कर सकता। सुदेशना बड़ी प्रसन्न हो गई, नंदिनी यदि ऐसी बात है तो तुम बड़ी प्रसन्नता से मेरे साथ महल में रहो, मैं तुम्हें पैर और झूठन नहीं छूने दूंगी। विराट की रानी ने जब इस प्रकार का आश्वासन दिया, तब पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी वहां रहने लगी और उसे कोई नहीं पहचान सका। तदनंतर सहदेव भी ग्वाले का विष बनाकर वैसी भाषा बोलता हुआ अटपटी अटपटी शब्दों के अंदर राजा विराट की गौशाला में पहुंच गया। उस तेजस्वी पुरुष को बुलाकर स्वयं राजा उसके समीप आए और पूछने लगे, तुम किसके आदमी हो, कहां से आए हो, कौन कौन सा काम करना चाहते हो, ठीक ठीक बताना। सहदेव ने कहा, मैं जाति का वैश्य हूं, मेरा नाम अरिष्टनेमी है, पहले मैं पांडवों के यहां गौशाला में रहता था, अब पांडव लोग जाने किधर चले गए, उनका राज्य छिन्न भिन्न हो गया, तो जब राजा ही नहीं रहे तो हम कहां रहते, हम आजीविका के मारे इधर उधर फिर रहे हैं, पांडवों के बाद आपके सिवा हमें कोई श्रेष्ठ राजा पसंद नहीं आया, इसलिए किसी के यहां नौकरी नहीं की, अब आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं। राजा विराट ने कहा, तुम्हें किस बात काम का अनुभव है, किस शर्त पर रहोगे और इसके लिए तुम्हें कितना वेतन देना पड़ेगा। सहदेव बोले, ये मैं बता चुका हूं कि पांडवों की गौओं को संभालने का काम करता था, वहां लोग मुझे तंतीपाल कहते थे, 40 कोस के अंदर जितनी गायें रहती हैं उनकी भूत भविष्य और वर्तमान काल की संख्या मुझे सदा मालूम रहती है। कितनी गौवें थी, कितनी है और कितनी होंगी, इसका मुझे ठीक ज्ञान रहता था। जिन उपायों से गौवों की बढ़ती होती रहे, उन्हें कोई रोग व्याधि न संतावे, इन सब बातों को मैं जानता हूँ। इसके सिवा मैं उत्तम लक्षणों वाले ऐसे बैलों की भी पहचान रखता हूँ जिनका मूत्र सूंघने मात्र से वंध्या स्त्री को गर्भ रह जाता है। विराटनगर का मेरे पास एक ही रंग के 100,000 पशु हैं, उनमें सभी उत्तम गुणों का सम्मिश्रण है। आज से उन पशुओं और उनके रक्षकों को मैं तुम्हें अधिकार में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब तुम्हारे अधीन रहेंगे। इस प्रकार राजा से परिचय करके सहदेव वहां सुख पूर्वक रहने लगे, उन्हें भी कोई पहचान नहीं सका। राजा ने उसके भरण पोषण की उचित व्यवस्था कर दी। तदनंतर वहां एक बहुत सुंदर पुरुष दिख पड़ा, जो स्त्रियों के समान आभूषण पहना हुआ था। उसके कानों में कुंडल और हाथों में शंख तथा सोने की चूड़ियां थी। उसके लंबे लंबे केश खुले हुए थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और हाथी के समान मस्ताली चाल थी, मानो वह अपने एक एक पग से पृथ्वी को कपाता चलता था। यह वीरवर अर्जुन ही था। राजा विराट की सभा में पहुंचकर उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया। महाराज, मैं नपुंसक हूं, मेरा नाम ब्रिहन्नला है। मैं नाश्ता गाता, बाजा बजाता हूँ, नृत्य और संगीत में बहुत प्रवीण हूँ। आप मुझे अपनी कन्या उत्तरा को इस कला की शिक्षा के लिए रख लें, मैं महारानी के यहाँ नाचने का काम करूंगा। विराट ने कहा, ब्रिहन्नले, तुम्हारे जैसे पुरुष से तो ये काम लेना मुझे उचित मालूम नहीं पड़ता। तुम्हारी बोली से, वाणी से और तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे डील डॉल से, जैसा तुम कह रहे हो ऐसा मुझे संदेह तो लग रहा है। मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम नपुंसकों का क्या है, हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारी कोई पेठ नहीं, बस हम तो हमारा इसी से गुजारा करते हैं, नाचना गाना बातें बनाना। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, अच्छी बात है। तुम मेरी बेटी उत्तरा तथा राज परिवार की अन्य कन्याओं को नृत्य की कला शिक्षा दिया करो। यह कहकर मत्स्य नरेश ने ब्रिहन्नला की संगीत, नृत्य और बाजा बजाने की कलाओं में परीक्षा की। उसके बाद वह अपने मंत्रियों से सलाह ली कि इसे अंतपुर में रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है, कहीं ये नपुंसक न हो और ऊपरी नपुंसक बना हुआ हो, तो कहीं ये हमारे अंतपुर में किसी प्रकार से दुराचार न फैला दे। मंत्रियों ने कहा, आपकी बात तो ठीक है, ऐसा करो, जवान स्त्रियों को इसके पास भेजो और इसकी जांच कराओ कि नपुंसक है कि नहीं। तब स्त्रियों को भेजा गया और नपुंसक पने की जांच कराई। जब सब तरह से उसका नपुंसक होना प्रमाणित हो गया, तब उस कन्या के अंतरपुर में रहने की आज्ञा मिली। राजा भी बड़ा खुश हो गया। वहां रहकर राजा उत्तरा और उसकी सखियों को, वहां रहकर अर्जुन उत्तरा और उसकी सखियों को तथा अन्य दासियों को भी गाने बजाने नाचने की शिक्षा देने लगे। इससे वे उन सबके प्रिय हो गए। कपट वेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन सदा अपने मन को पूर्ण रूप से वश में रखे हुए थे। इससे बाहर या भीतर का कोई भी भाव से उनको कोई पहचान नहीं सकता था। अब इसके बाद नकुल अश्वपाल का वेश धारण करके राजा विराट के यहाँ उपस्थित हुआ और राजा और राजभवन के पास इधर उधर घूम फिर कर घोड़े देखने लगा। फिर राजा ने दरबार में राजा के दरबार में आकर उसने कहा, महाराज आपका कल्याण हो, अभी मैं घूमते घूमते आपके घोड़ों को देखकर आया हूं। आपके घोड़ों को कुछ शिक्षा देने की जरूरत मालूम दे रही है। मेरे पास अश्वविद्या है, बड़े बड़े राजाओं के यहां आदर पा चुका हूं। मेरी इच्छा है आपके यहां घोड़ों को अच्छा शिक्षित कर दूं, युद्ध के अंदर वैसे भी रथ में भी सब जगह उनको किस प्रकार चलना चाहिए, किस पैर को किस समय कब उठाना चाहिए, कितना उठाना चाहिए, ये सब मैं शिक्षा देना जानता हूं। विराट ने कहा, मैं तुम्हें रहने के लिए घर सवारी बहुत सा धन दूंगा, तुम हमारे यहां घोड़ों को ऐसा शिक्षित कर दीजिए कि सामने हाथी आ जाए तो उसके ऊपर कैसे चढ़ा जाए और दूसरे घोड़े आ जाए तो कैसे चढ़ा जाए, युद्ध वगैरह की पूरी शिक्षा दे देना। शिक्षा देने का काम तुम्हारे है, किंतु यह बताओ कि तुम्हें अश्व संबंधी ये कला विशेष ज्ञान है पहले कहां की तो बताओ, और जरा अश्व संबंधी ज्ञान के विषय में और भी बातें बताओ। नकुल ने कहा, महाराज मैं घोड़े की जाति उसका स्वभाव उन्हें शिक्षा देकर सीधा कर सकता हूं, दुष्ट घोड़ों को ठीक करने का भी उपाय जानता हूं, इसके सिवा जो बहुत अड़ियल होते हैं उनको नम्र बनाना जानता हूं, घोड़ों की चिकित्सा का भी मुझे ज्ञान है, मेरी सिखाई हुई घोड़ी भी बिगड़ नहीं सकती है, फिर घोड़ों की तो बात ही क्या है। महाराज मैं पहले राजा युधिष्ठिर के यहां काम करता था, पर क्या करें, समय का फेर ऐसा ही है, आप जानते ही हैं पांडवों के साथ क्या हुआ, लोग मुझे वहां ग्रंथिक नाम से पुकारते थे, मेरा नाम ग्रंथिक है। तो ठीक है, यहां जितने घोड़े और वाहन हैं उन सबको मैं आज तुम्हारे अधीन करता हूं, घोड़े जोतने वाले पुराने सारथी लोग भी तुम्हारे अधिकार में रहेंगे, तुमसे मिलकर आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, जितनी राजा युधिष्ठिर के दर्शन से होती थी वैसी प्रसन्नता हुई है। इस प्रकार विराट से सम्मानित होकर नकुल वहां रहने लगे। नगर में घूमते समय भी उस सुंदर युवक को कोई पहचान नहीं सकता था, जिनके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता था, वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी पांडव लोग इस तरह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास की अवधि पूरी करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।